हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 30, 31 एंड 32। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युद्धम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकीं। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयामन् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वेऽपि वस्वा मृत्युमेतदेव गोविन्द धामो धर्माधवेति। गोविन्द धामो धर्माधवेति। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। सम्राट परीक्षित का जन्म हुआ और ब्राह्मणगण जिनको महाराजा युधिष्ठिर ने बहुत सारा धन धान्य उपहार प्रदान किए वो जातक कर्म संस्कार संपन्न करके ज्योतिष विद्या के अनुसार महाराजा परीक्षित के भविष्य में जो उनके अंदर क्वालिटीज होंगी वो सारी बताने के बाद वो अपने अपने घरों में चले गए और उसके उपरांत सुत गोस्वामी बताते हैं स एष लोकी विख्यातः परीक्षीदिति यत् प्रभु पूर्वं दृष्टं अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। स एष लोकी विख्यातः परीक्षीदिति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टं अनुध्यायन् परीक्षेत निरीक्ष्विहम्। स एष लोकी विख्यातः परीक्षीदिति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् परीक्षितरणे नरेष्विहम्। स एष लोकी विख्यात परीक्षिदिति यत् प्रभु, यानी वही बच्चा जो अच्छा, जिसके विषय में ब्राह्मण अभी ये सब भविष्यवाणियां करके गए। स एष वही बच्चा लोके विख्यात, इस संसार में विख्यात हुआ परीक्षिदिति यत् प्रभु, परीक्षित नाम से विख्यात हुआ। जन्म में जन्मजात जब संस्कार हुआ था तब नाम में तो उनका नाम क्या रखा गया था, विष्णुरात, क्योंकि वो भगवान के द्वारा सुरक्षित किया गया था तो उनके दो नाम थे, विष्णुरात भी उनको कहा जाता है। और परीक्षित क्यों कहा जाता था, वे कह रहे हैं पूर्वम दृष्टम अनुध्याय, जो उन्होंने पहले देखा हुआ था, अर्थात गर्भ में जो उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे, जिस भगवान को उन्होंने गर्भ में देखा था पहले से। परीक्षित निरेश्वहम, परीक्षित वो परीक्षा करता था, हर ओर उन्हीं को ढूंढता था, प्रत्येक व्यक्ति, नरेशु लिखा हुआ ना, नरेश मतलब जिस भी व्यक्ति को देखता था तो उनको वही याद आता था कि मैंने बहुत ही सुंदर एक व्यक्ति को, एक पुरुष को अपने माता के गर्भ में देखा था तो उसको गौर से देखने लगता था, कहीं ये वही तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है, कोई कृष्ण की तरह सुंदर नहीं हो सकता, कोई कृष्ण की तरह आकर्षित करने वाला नहीं हो सकता, तो वो जिसको भी देखता था तो निराश हो जाता था कि नहीं ये वो नहीं है, मुझे वो देखना है जो मैंने माता के गर्भ में देखा था। तो परीक्षित महाराज जो है वो हर किसी को देखकर उसकी परीक्षा करते थे, मतलब वो सर्वत्र परीक्षण करते रहते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित लोक में, इसलिए वो विक्षण परीक्षा कर रहे, देखो उसको भी देख कर, कैसे लोग देखते देखते उनको ऐसे बोलते थे, देखो अभी देख रहे, देखेगा इसको, इतना गौर से देखेगा, इतना गौर से देखेगा, तो गौर से देखने को परीक्षण करना कहते ना, तो इसे बोलते बोलते उनका नाम भी परीक्षित हो गया था। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें बहुत सुंदर बताएंगे कि जो बचपन के संस्कार होते हैं ना, भले हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि माता के गर्भ में साक्षात का भगवान का दर्शन हुआ हो, लेकिन बचपन में जो संस्कार अगर हम किसी बच्चे को देते हैं भगवान के प्रति, तो फिर वो संस्कार पूरा जीवन उसके साथ चलते हैं और वो निश्चित रूप से बड़े होकर भगवान का भक्त बनता है। अनुवाद देखिए, इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित अर्थात परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उस व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिसे इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उसका अर्थात भगवान का चिंतन करता रहेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए ही उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी, अतएव वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। मतलब कहने का अर्थ ये है, जो बचपन से संस्कार होंगे ना तो उसकी छाप मन में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे बताया कि वह निरंतर उनका चिंतन करते थे, अभी क्योंकि वही चीज उनको चाहिए होती है, बचपन का एक आकर्षण होता है, क्योंकि बचपन में बुद्धि इतनी निर्मल होती है कि जिस तरफ दौड़ते, मतलब हम जिस तरफ आकर्षित करते हैं ना बच्चों को, वो उधर ही आकर्षित होते हैं और पूरा जीवन मन पर वो छाप बैठ जाते हैं। आजकल हम बच्चों को क्या कराते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको माता अपना टीवी सीरीज देख रही होती है और बच्चे को बैठती है, बेटी देखो टीवी, देखो टीवी में क्या है, फिर टीवी में वो अश्लील दृश्य होते हैं, काम वासनापूर्ण जो दृश्य होते हैं वही दृश्य पूरे जीवन उसके मानस पटल पर छाए हुए होते हैं, उसके चित्त पर वही चलते। आज की माताएं ना स्वयं भागवत और भगवत गीता का पाठ करती हैं, ना भगवान की भक्ति करती हैं, ना भगवान के पवित्र नाम का जप करती हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बच्चों को वो क्या सिखाएंगी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव वे निरंतर भगवान का चिंतन करते थे। एक बार यदि भगवान के दिव्य स्वरूप की इच्छा किसी के मन में अमिट हो जाए तो वह भगवान को बुलाए नहीं भूल सकता। बालक परीक्षित गर्भ से निकलने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने के लिए करता था कि कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं है जिसे उसने सर्वप्रथम गर्भ में देखा था, लेकिन भगवान के समान या उनसे बढ़कर कोई आकर्षक हो ही नहीं सकता। अतएव बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका, लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे और इस तरह स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहते। वो भले ही दूसरे लोगों में भगवान को नहीं देख पाते थे, लेकिन मन तो उसका वही ढूंढ रहे थे ना, तो चित्त में वही छवि ढूंढ रहे होते, तो कंटिन्यूअस वो भगवान का ही ध्यान करते थे। इस प्रसंग में श्री राजीव गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही भांति भगवत बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली ना हो कि उसे गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहें तो वह ऐसा अवश्य बन सकता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि इस प्रसंग में मैं अपना व्यावहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे माता पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन देवताओं की पूजा किया करता था और निकट के राधा गोविंद मंदिर के अनुष्ठानों का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों को का अपने खेलने के देवों के साथ अनुकरण करता, यानी जैसे जैसे मंदिर में करते थे ना, फिर मैं घर पे आकर वैसे ही करता था अपने छोटे छोटे खेलने के देवताओं, मतलब उन्हीं के साथ अभी मैं खेलता था, अनुष्ठान करता था वैसे ही, और मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया था। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुसार इन उत्सवों को देखा करते थे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया, लेकिन बाद में क्योंकि बचपन में इजी था तो मैं क्या करता था, देवताओं के साथ ये जो जितने मेरे भगवान मेरे पिताजी ने मुझे ठाकुर जी लाके दिए थे उनके साथ खेलता था, और जो प्रोग्राम्स मंदिर में देख के आता था वो घर पे आके मैं वे सेलिब्रेट करता था। लेकिन बाद में स्कूल और कॉलेज में बहुत ज्यादा बिजी हो गया तो ये सारे कार्यकलाप छूट गए। किंतु अपनी युवा अवस्था में जब मैं अपने गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो गई। फिर क्या होता है, भले ही सेंटर में बचपन में जब हम अपने बच्चों को, जब बच्चे जो होते हैं ना छोटे, वो हमारे अंडर में होते हैं, हम जैसे उनको संस्कार देंगे वो वैसा ही करेंगे, फिर अगर हमने उनको भगवान की भक्ति की छाप एक बार उनके हृदय पर लगा दी ना, फिर बड़े होने के बाद हम क्या बोलते हैं, ये छोटा होता था भगवत गीता पढ़ता था मेरे साथ जप करता था, अभी बड़ा हो गया है स्कूल जाता है ट्यूशन जाता है दोस्तों के साथ होता है, इसको समय नहीं मिलता। भले ही समय नहीं मिलता है, लेकिन आपने जो भक्ति उसको शुरू में करवाई है ना, वो कभी भी जाया नहीं होती है। इसे भगवान कहते 2.40 में नेहा भी क्रमनाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो वै। थोड़ी सी भी प्रगति यदि इस मार्ग पर हो जाती है तो वो कभी भी जाया नहीं होती है। तो यदि हम बचपन में अपने बच्चों से भक्ति करवाते हैं तो फिर एक समय अवश्य ऐसा आता है जब वो फिर से किसी शुद्ध भक्त की संगति को प्राप्त करता है, क्योंकि वो भक्ति जो उसने की है वो जाया नहीं होती है, वो उसके पास ही होती है, उसको एक समय चाहिए होता है। और जैसे एक भक्ति का बीज आपने बो दिया, फिर क्या एक मौसम चाहिए, एक समय चाहिए जिसमें वो उस जो बीज है वो उसमें अंकुर फूटेगा और अवश्य फूल लगेंगे, तो हमें उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये शुरू से ही हमें करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि बचपन में किया था, बीच में मैं भूल गया, लेकिन जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से जब मिला तो मेरी अभिरुचि फिर से जागृत हो गई और वे खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गए। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ डाले। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह उनकी कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो गई। अभी शुरू में अगर नहीं सोचते कि अभी बच्चा है, इसको क्या है, बच्चे को क्या भगवान की भक्ति बताना, बच्चे को क्या माला कराना, लेकिन ये अवश्य आगे जाकर लाभदायक होता है। और प्रहलाद महाराज के बारे में यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे, महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरी छाप बाल्यपन से ही प्रारंभ में ही पढ़ जानी चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतां इह। जब कौमार अवस्था होती है, छोटे बच्चे होते हैं, तब से ही भागवत धर्म की शिक्षा दे देनी चाहिए, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्मम तदर्थम दुरम अर्थदम। एक तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है और कभी भी छूट सकता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए अभी तो इसके खेलने के दिन है, अभी तो छोटा है, अभी बड़ा होगा, अभी जब भक्ति बड़े होकर बूढ़े होकर करेगा, ये नहीं सोचना चाहिए। जैसे ही हमें लगे कि ये छोटा है, अभी मेरी बात सुन रहा है, तभी से उसको भगवान के विषय में बताना चाहिए, भगवान की भक्ति के विषय में बताना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम को जप करने की शिक्षा देनी चाहिए, भगवान की जो भगवान से रिलेटेड जो कथाएं हैं वो बतानी चाहिए, तो अत्यंत ही उसके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से महाराजा परीक्षित सदैव मन में केवल कृष्ण के विषय में ही सोचते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। इसलिए जब गर्भावस्था होती है, तभी ही माताओं को, जो माता होती है उसको स्पेशली सोचना चाहिए कि गर्भ में जब मेरा बच्चा है उसी समय हमें भागवतम का श्रवण करना चाहिए, भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के दर्शन करने चाहिए। लोग क्या करते हैं, अभी अंग्रेजों के बच्चे के फोटोज लगाते हैं अपने रूम में, तो फिर अंग्रेजों के बच्चे क्या करते हैं, बड़े होकर माता पिता को छोड़ देते हैं, तो फिर हमारे बच्चे भी ऐसे, हमें क्या करना चाहिए, भगवान के फोटोज लगाने चाहिए, घर पे भगवान के फोटोज लगाने चाहिए, भगवान के विग्रह के दर्शन करने चाहिए, ताकि वो सारे गुण जो भक्त के अंदर होते हैं वो हमारे बच्चे में हो। और इस तरह से जो बच्चा गर्भ में होता है उसको भी बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं, स राजा पुत्रो वृद्धि आशु शुक्ल इवोडुप आपूर्यमाण पितृभि काष्ठाभिर्जीवसोन्वहम् स राजपुत्र वृद्धि आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् स राजा पुत्रो वृद्धि आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् स राजपुत्रो विवृद्धि। वो राजपुत्र अर्थात महाराज परीक्षित ववृद्धि आशु शुक्लः इवोडुपो, यानी कि फिर वो बहुत आशु का मतलब बहुत जल्दी जल्दी, जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह से वो भी बढ़ने लगा। आपूर्यमाण पितृ भी, और उनका पूर्ण अपने पितामाओं की सुरक्षा में, उनकी देखरेख में वो पूर्ण उनका विकास होने लगा। अनुवाद, जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच में तेजी से विकास करने लगा। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं, यक्षमाणो स्वमेधेना जातिद्रोह जिहासया राजा लब्ध धनो धत्यो नान्यत्र करदंडयो यक्षमाणो श्वमेधेना ज्ञाति द्रोह जिहासया राजा लब्ध धनो धत्याओ नान्यत्र करदंडयो यक्षमाणोश्वमेधीना जाति द्रोह जिहासया राजा लब्ध धनो धत्याओ नान्यत्र करदंडयो। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज तो बढ़ रहे हैं अपने पितामहों के संरक्षण में, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को एक चिंता, मतलब ये वाली जो पहले स्टोरी बताई थी ना कि फिर युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध से होकर आए थे तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे कि मेरे द्वारा इतना अपराध हो गया, तो उस बात को अभी पहले तो डिटेल से कह गए, अभी संक्षिप्त में उसी स्टोरी को आगे बढ़ा रहे ताकि वो आगे बढ़ सके इससे, क्योंकि ये सारा तो बीच में छोड़ दिया था ना इन्होंने, ये सब बता रहे थे। देखो उनका प्रश्न क्या था, परीक्षित के विषय में बताओ। अब जब परीक्षित के विषय में उन्होंने बताना शुरू किया था सूत गोस्वामी ने, फिर क्या हुआ, जैसे ही अश्वत्थामा ने तीर मारा और भगवान ने उनकी रक्षा की, तो अर्जुन के विषय में बात आई कि अर्जुन को बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा क्रोध हुआ और वो अश्वत्थामा को मारने के लिए चला गया, वो बात बताई। उसके बाद आठवें अध्याय में महारानी कुंती के द्वारा प्रार्थनाओं के विषय में बताया कि महारानी कुंती ने जो प्रार्थनाएं की थी, और उसके बाद नवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव, क्योंकि महारानी के कुंती की प्रार्थनाएं खत्म हुई तो भीष्म देव के विषय में बताया कि उनको देह त्याग करना है, तो और उधर से युधिष्ठिर महाराज इतना ज्यादा संतप्त थे तो उनको भी लेके चले गए भीष्म देव के पास, और भीष्म देव ने बहुत स्तुति की। किसकी स्तुति की? भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि भीष्म देव के द्वारा स्तुति करवाना चाहते थे। उसके बाद भगवान थोड़े समय के लिए पुनः द्वारिका में आए, सॉरी हस्तिनापुर में आए, फिर द्वारिका के लिए जब वापस से प्रस्थान करने के विषय में बताया, और जब द्वारिका में प्रस्थान करने के लिए जा रहे थे उस समय पहले हस्तिनापुर की स्त्रियों ने भगवान की प्रशंसा की, उसके बाद द्वारिका की स्त्रियों ने भगवान की प्रशंसा की, और उसके बाद हर कोई भगवान की स्तुति करने के लिए आ रहा था। रास्ते में हमने देखा वेश्याएं हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में प्रवेश करने के समय उनका स्वागत करने के लिए आते थे। फिर भगवान किस प्रकार से अपनी माताओं से मिले और किस प्रकार से अपनी पत्नियों से मिले, तो ये सब बताया। अब यहाँ यह प्रश्न उठ रहा है कि जब वो सीधा जा रहे थे उनको आगे स्टोरी बतानी चाहिए थी ना, परीक्षित का जन्म हुआ उसके बाद क्या हुआ ये बताना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो और भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन कराना चाहते थे, वो और भी दिखाना चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण कितने महान हैं, क्योंकि इस बीच में जो भी उन्होंने बताया वो केवल और केवल कृष्ण के विषय में। तो अब क्योंकि ये पहला स्कंद है, पहले स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की महानता के विषय में कि कौन कौन भगवान श्री कृष्ण की महानता को किस प्रकार से बखान करता है, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्तियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से हर किसी को सम्मान देते हैं, हर किसी के साथ प्रेम करते हैं, तो वो सब वो बताना चाहते थे। क्योंकि अब ये पहले स्कंद में भगवान के साथ प्रेम के आनंद का रसास्वादन करा रहे हैं, पहले स्कंद में भगवान के विषय में लीलाएं आएंगी, फिर बीच में नहीं कृष्ण की बात आएगी, बीच में 9 स्कंद तक तो विभिन्न राजा और भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में बताया जाएगा, अभी साक्षात भगवान के विषय में बताया जा रहा है। तो सूत गोस्वामी चाहते थे कि कुछ रह न जाए और इतना बता दूं कि बाकी 9 स्कंद तक तड़प बनी रहेगी कि वापस मुझे जल्दी से उसी भगवान के विषय में सुनना है, वरना अगर पता ही नहीं होगा भगवान की महानता को तो उत्सुकता नहीं रहेगी। तो इसलिए उत्सुकता को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये बीच के अध्याय बताए, लेकिन अब क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, भगवान द्वारिका में पहुंच गए तो वापस से वहीं से स्टार्ट किया और परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में बताया। और अब बता रहे हैं कि जब युद्ध हो गया था तो क्या हो गया था, परीक्षित युधिष्ठिर महाराज को हृदय में ये हो रहा था कि स्वजनों का वध हुआ है। ज्ञाति द्रोहो जिहास्या, अर्थात स्वजनों से युद्ध करने के जो द्रोह है, ज्ञाति द्रोह उन्होंने जो किया है उससे जिहास्या, उनसे मुक्त होने के लिए उन्होंने क्या किया, यक्षमाणि अश्वमेधेन, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का विचार किया। लेकिन जब ये विचार किया तो राज लब्ध धनो दध्यो, उनको ऐसा पता चला कि कुछ धन प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब धन तो कुरुक्षेत्र युद्ध में पूरा समाप्त हो गया था, अब उनके पास इतना ज्यादा धन बचा नहीं था। पहले हस्तिनापुर दुर्योधन के पास था, अब दुर्योधन तो चला गया, चलो ठीक है मर गया, लेकिन जो हस्तिनापुर हमें दिया है वो बिल्कुल खाली है, उसके पास इतना ज्यादा, उस हस्तिनापुर के कोष में इतना ज्यादा धन नहीं है। और नियंत्र कर दंडनों, और उनके पास सिर्फ और सिर्फ लगान तथा जुर्माना, जो टैक्स वगैरह लेते हैं ना, वही एक तरीका था। अब वो उससे इतना धन नहीं कमा सकते थे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत बहुत धन संपत्ति की जरूरत पड़ती है। तो अनुवाद देखिए, इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। श्रीला प्रभुपाद जी सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता की का अधिकार मिला हुआ है, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माना एकत्र, ये राजा का अधिकार होता है कि वो टैक्स लेता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष का क्षय हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अतिरिक्त कोई दूसरा कोष न था। ऐसा कोष केवल राज्य बजट के लिए ही पर्याप्त था, अतएव राजा को चिंता थी कि किसी अन्य विधि से वह अधिक धन प्राप्त करे जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके। अब उस वो तो सिर्फ राज्य बजट में ही पूरा आ जाता था, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तो उसको और कोई तरीके से धन प्राप्त करना पड़ेगा। तो महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्म देव के आदेशानुसार संपन्न करना चाहते, क्योंकि भीष्म देव ने उन्हें बताया था कि यदि आप अश्वमेध यज्ञ करोगे तो फिर आप इन अपराधों से मुक्त हो जाओगे। तो वो यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उसको धन चाहिए था। अब वो धन कैसे प्राप्त करते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा।